नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रामायण से पहले पॉडकास्ट के 14वें एपिसोड में। पॉडकास्ट की पिछली कड़ी में हमने जाना कि कैसे देवर्षि नारद ने लंकापति रावण को यमराज से युद्ध करने के लिए उकसाया। उनका ऐसा मानना था कि स्वयं मृत्यु के अलावा और कोई भी दुराचारी दशानन को रोकने में समर्थ नहीं था, इसलिए नारद जी यह मान बैठे थे कि यमपुरी पर आक्रमण करने के बाद लंकापति का विनाश होना अनिवार्य था। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब रावण ने यमलोक पर आक्रमण करने की धृष्टता की। मैं हूं आपका सूत्रधार गौरव तिवारी और आप सुन रहे हैं रामायण से पहले पॉडकास्ट का 14वां एपिसोड, रावण यमराज युद्ध। रावण से संवाद करने के तुरंत बाद नारद जी यमलोक पधारे और मृत्युलोक के स्वामी यम से मिलकर उन्हें रावण की यमलोक पर आक्रमण करने की योजना के बारे में बताने लगे। वे दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे कि पुष्पक विमान पर आरूढ़ दशानन अपनी विशाल सेना के साथ यमलोक में आ पहुंचा। पुष्पक की आभा से यमपुरी का अंधकारमयी वातावरण तेज ज्योति से आलोकित हो उठा। राक्षसराज दशानन ने जैसे ही यमपुरी का दृश्य देखा, वैसे ही उसे नारद जी की कही हुई बातें स्मरण हो गईं कि कैसे उसके पूर्वज व साथी असुरों की जीवात्माएं वहां तरह तरह की यातनाएं भोग रही थी। रावण ने देखा कि भयंकर दिखने वाले यमराज के सेवक उन्हें मार रहे थे, तपते रेत पर बार बार दौड़ा रहे थे, रक्त से भरी बैतरणी नदी में डुबो रहे थे और असीपत्र नामक वन में जहां पत्तों की धार तलवार के जैसी थी उसमें चलवाकर चोट पहुंचा रहे थे। किसी को तपती कड़ाई में डाला जा रहा था तो कहीं भयंकर दिखने वाले जीव तथा विशाल सर्पों से कटवाकर उन्हें कष्ट दिया जा रहा था। वहीं उसने देखा कि उसके द्वारा हत्या किए गए साधुजन, धर्मात्मा मनुष्य एवं ऋषि मुनियों की जीवात्माएं वहां सुंदर महलों में रहकर स्वर्ण आभूषणों का धारण किए हुए अच्छा भोजन ग्रहण करते हुए आनंद से अपना समय बिता रही थी। उसके चाहने वालों की यह दुर्दशा और उसके शत्रुओं का ऐसा सुख देख रावण का क्रोध उसी समय चरम पर पहुंच गया। रावण ने अपने पूर्वजों की आत्मा को नर्क में इस प्रकार कष्ट भोगता देख उसी क्षण अपने मायावी बल का प्रयोग किया और उन्हें उनके दंड से मुक्त कर दिया। उसके ऐसा करने से पीड़ा से चीत्कार कर रही आत्माओं को अपने कष्ट से छुटकारा मिला और वे सभी लंकापति के गुणगान करने लगी। वहीं दूसरी ओर रावण को धर्म के कार्य में इस प्रकार बाधा डालने का दुस्साहस करते देख यमराज भी अपने आसन पर स्थिर नहीं बैठ पाए और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को रावण पर आक्रमण करने का आदेश दे डाला। देखते ही देखते गदा, शूल, मुशल और तोमरों से सुसज्जित यमदूतों ने पुष्पक विमान को चारों ओर से घेर लिया और उस पर टूट पड़े। किसी ने विमान का आसन तोड़ दिया तो किसी ने उसका द्वार, कोई विमान की वेदी तोड़ रहा था तो कोई उसके पंख। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण पुष्पक विमान को कोई हानि नहीं हुई और वह ज्यों का त्यों खड़ा रहा। यमदूतों को ऐसा करते देख प्रहस्त, महोदर तथा मारीच आदि रावण के मंत्रीगण भी उन पर आक्रमण करने लगे और वृक्ष, स्तंभ आदि उखाड़कर यमदूतों पर प्रहार करने लगे। दोनों पक्षों में बहुत देर चले इस संघर्ष के बाद लहूलुहान हो चुके रावण के सारे मंत्रियों ने असंख्य यमदूतों का संहार कर दिया। इसके बाद रावण स्वयं पुष्पक से नीचे उतरा और तरह तरह के शक्ति बाणों का प्रयोग कर यमराज की सेना के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा। इसके बाद यमराज के सैनिकों ने केवल रावण को घेर कर उस पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और हजारों की संख्या में एकत्रित होकर उसके शरीर को शूल से छेदने लगे। रावण का कवच टूटकर भूमि पर गिर गया और शूलों की नुकीली चोट से उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। बस लंकापति का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। उसने अपना धनुष उठाया और तीनों लोकों में सबसे प्रलयंकारी अस्त्र पाशुपत अस्त्र का संहार कर यमराज के सैनिकों पर कर दिया। देखते ही देखते पाशुपत अस्त्र की ज्वाला से यमपुरी के समस्त सैनिक क्षण भर में ही भस्म हो गए। अपनी पूरी सेना का एक ही बार में इस प्रकार विनाश हो चुका देख यमराज अब स्वयं युद्ध करने के लिए रावण के समक्ष अपने विशाल रथ पर आरूढ़ यम अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र यमदंड और कालपाश का धारण करते हुए क्रोध से लाल हो चुकी आंखों से रावण की ओर देखते हुए युद्ध भूमि में उतरे। रावण के मंत्रियों ने जब स्वयं मृत्यु रूपी यमराज को देखा तब वे भय से कांपते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तब दशानन अकेला ही यमराज के समक्ष युद्ध के लिए खड़ा हो गया था। रावण को सामने देख यमराज ने शक्ति बाण और तोमरों से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसके उत्तर में रावण ने भी यमराज के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। इस प्रकार उन दोनों के बीच लगातार 7 दिनों तक युद्ध चलता रहा, परंतु कोई भी एक दूसरे को हराने में समर्थ नहीं हुआ। इस समय तक रावण यमराज के सारथी और घोड़ों को भी अपने बाणों से घायल कर चुका था और स्वयं यमराज पर भी 1 लाख से अधिक बाण मार चुका था। इन सबको देखते हुए युद्ध की दिशा बदलने हेतु भगवान यम ने अपने अमोघ काल दंड का आह्वान किया। वह उसे रावण की ओर छोड़ने ही वाले थे कि वहां ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, हे वैवस्वान, मेरी बात सुनो। मेरे द्वारा बनाया गया यह काल दंड अमोघ है, जिसे जिस प्राणी पर भी प्रयोग किया जाए उसकी मृत्यु होना निश्चित है। दूसरी ओर मैंने रावण को किसी देवता के हाथों उसका वध नहीं हो सकता ऐसा वरदान भी दिया है। अब यदि इस काल दंड के प्रयोग से रावण की मृत्यु हो जाती है तो मेरा वरदान व्यर्थ हो जाएगा, और यदि रावण का वध नहीं हुआ तो काल दंड के अमोघ होने की गरिमा पर आंच आ जाएगी। तो इस प्रकार दोनों परिस्थितियों में मेरी ही बात असत्य हो जाएगी। ब्रह्मा जी के धर्म संकट को समझते हुए यमराज ने उनकी बात मान ली और रावण पर काल दंड से प्रहार नहीं किया। परंतु जिस शत्रु का वह चाह कर भी वध नहीं कर सकते उसके साथ युद्ध करने का क्या ही अर्थ है, ऐसा सोचते हुए यमराज अपने रथ के साथ युद्ध भूमि से अंतर ध्यान हो गए। यमराज के इस तरह रावण की दृष्टि से ओझल हो जाने को उसने उनका पलायन समझा और स्वयं को विजेता घोषित कर दिया और पुष्पक पर आरूढ़ अपनी वीर गाथा गाता हुआ वहां से निकल गया। यमराज को पराजित करने के बाद रावण ने अगले लोकपाल वरुण देव पर आक्रमण करने का मन बनाया। क्या हुआ जब रावण ने वरुण लोक पर आक्रमण किया, जानेंगे रामायण से पहले पॉडकास्ट की अगली कड़ी में। सूत्रधार प्रस्तुत इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए और हर सप्ताह नए एपिसोड का आनंद लीजिए। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिए और सूत्रधार के द्वारा प्रस्तुत अन्य पॉडकास्ट को भी सुनिए और फॉलो कीजिए। सूत्रधार से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारा हैंडल है MySutradhar, MySutradhar। आर्थिक रूप से हमारी सहायता करने के लिए आप हमारी वेबसाइट MySutradhar.com पर जाकर भारतीय कहानियों पर आधारित पजल्स और गेम्स भी खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट है MySutradhar.com। अब मैं आपका सूत्रधार गौरव तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले सप्ताह और जानते हैं रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध के बारे में। धन्यवाद।